एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की जिसने सिर्फ छपा नहीं बल्कि अमेरिकी समाज की नब्ज पर उंगली रख दी।
हाँ बिल्कुल, केन केसी का कालजयी उपन्यास वन फ्लू ओवर द कुकूज नेस्ट।
सही कहा, एक ऐसी कहानी जो पाठक को अंदर तक झकझोर देती है, सोचने पर मजबूर करती है।
और इसके लेखक केन केसी वो खुद भी एक काफी दिलचस्प शख्सियत थे।
हाँ, 1960s के दशक की जो अमेरिकी प्रति संस्कृति थी, काउंटर कल्चर जिसे कहते हैं, उसके एक अहम किरदार।
व्यक्तिवाद, सत्ता का विरोध, चेतना का विस्तार, ये सब उनके जीवन और लेखन के बिल्कुल केंद्र में था।
और इस उपन्यास पर उनके दो निजी अनुभवों का असर तो साफ दिखता है, है ना?
हाँ बिल्कुल, एक तो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले LSD प्रयोग,
हाँ, जिसमें उन्होंने चेतना की बदली हुई अवस्थाओं का अनुभव किया,
और दूसरा एक मनोरोग अस्पताल में नाइट अटेंडेंट का काम। उसने उन्हें संस्थागत नियंत्रण और मानवीय स्थिति को बहुत नजदीक से देखने का मौका दिया।
आप सोचिए, ये अनुभव सिर्फ कोई बैकग्राउंड नहीं थे।
नहीं बिल्कुल नहीं,
इन्होंने केसी को शायद ये सिखाया कि जिसे हम वास्तविकता या सामान्य कहते हैं वो कितनी रिलेटिव हो सकती है,
और कैसे सत्ता संरचनाएं, चाहे वो अस्पताल हो या समाज, इस वास्तविकता को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं।
सही।
और उपन्यास छपा भी कब? 1962 में। अमेरिका के लिए एक बड़ी उथल पुथल का दौर था वो।
हाँ, सिविल राइट्स मूवमेंट जोर पकड़ रहा था,
वियतनाम युद्ध की आहट थी,
और युवा पीढ़ी स्थापित व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रही थी। ऐसे माहौल में ये किताब आई तो ये सिर्फ एक मनोरोग वार्ड की कहानी नहीं रही फिर।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बन गई। संस्थागत दमन और व्यक्तिगत आजादी के बीच जो एक शाश्वत संघर्ष है, उसका एक शक्तिशाली रूपक।
बिल्कुल, तो आज की इस बातचीत में हमें सिर्फ कहानी का सार नहीं जानेंगे बल्कि कोशिश करेंगे उन गहराइयों को छूने की।
हाँ, जहाँ केसी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं।
सवाल ये है कि क्या ये उपन्यास सिर्फ उस एक वार्ड की कहानी है या ये हमारे अपने समाज का, अपनी संस्थाओं का एक आईना भी है?
एक डरावना आईना शायद।
हाँ, और क्या मैकमर्फी जैसा विद्रोह आज भी संभव है या जरूरी है? चलिए इसी पड़ताल में उतरते हैं।
तो कहानी का मंच है ओरेगन का एक सरकारी मनोरोग अस्पताल, लेकिन ये कोई साधारण अस्पताल नहीं लगता।
हाँ, वहाँ हवा में एक अजीब सी ठंडक है, एक अनुशासन की गंध जैसे घुली हुई है।
सब कुछ तय है, उठने का समय, दवा का समय, ग्रुप थेरेपी का समय।
बिल्कुल रोबोटिक जैसा।
हाँ, दिनचर्या इतनी सख्त और एक रस है कि मरीजों की अपनी पहचान, उनकी इच्छाएं, वो जैसे धीरे धीरे घुलकर खत्म हो जाती हैं। उन्हें निष्क्रिय, आज्ञाकारी और एक तरह से अदृश्य बना दिया गया है।
और मजे की बात यह है कि ये पूरी कहानी हमें चीफ ब्रूम ब्रोमिडन की नजरों से दिखती है।
हाँ, एक विशालकाय मूल अमेरिकी मरीज जो सालों से गूंगा और बहरा होने का नाटक कर रहा है।
सोचिए जरा, वो खामोशी से सब देखता है, सुनता है और अपनी समझ से दुनिया को एक विशाल अमानवीय मशीन के रूप में देखता है,
जिसे वो कंबाइन कहता है।
हाँ, कंबाइन। और ये सिर्फ अस्पताल नहीं है उसके लिए।
नहीं, ये समाज की वो पूरी व्यवस्था है जो इंसानों को पुर्जों में बदलना चाहती है। और ब्रोमिडन अक्सर एक धुंध का भी जिक्र करता है, फॉग, जो वार्ड में फैली रहती है।
अच्छा,
ये सिर्फ दवाओं का असर नहीं है, ये एक मानसिक कवच भी है शायद, जो उसे और दूसरे मरीजों को वार्ड की कठोर सच्चाई से, अपनी बेबसी से बचाता है।
मतलब ये धुंध उन्हें सोचने, समझने और महसूस करने से रोकती है।
हाँ, एक तरह से वास्तविकता से बचने का तरीका।
तो क्या ब्रोमिडन की ये कंबाइन और धुंध की बातें, क्या ये सिर्फ उसका भ्रम है जैसा अस्पताल का स्टाफ मानेगा,
या फिर ये उस व्यवस्था की क्रूर सच्चाई को देखने का एक अलग, ज्यादा पैना नजरिया है?
हाँ, जिसे बाकी लोग या तो देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते।
बिल्कुल, केसी यहाँ हमें पाठक के तौर पर भी चुनौती देते हैं कि हम किसकी वास्तविकता पर भरोसा करें।
सही कहा।
और इस नियंत्रित, धुंध भरी दुनिया की रानी है हेड नर्स मिल्ड्रिड रैचेट, जिसे मरीज डर से बिग नर्स कहते हैं।
उसका नाम ही काफी है।
हाँ, उसकी ताकत उसके पद में तो है, लेकिन उससे कई ज्यादा उसके तरीके में है। वो कोई जालिम तानाशाह नहीं लगती बाहर से,
बल्कि एक ठंडी कुशल प्रबंधक जैसी।
बिल्कुल, जो नियमों और मुस्कुराहट के पीछे अपनी इस्पाती पकड़ छुपाए रखती है। वो चीखती चिल्लाती नहीं,
वो मरीजों की कमजोरियों, उनके डर और शर्मिंदगी को उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करती है ना?
एग्जैक्टली, उसका लक्ष्य मरीजों को ठीक करना कम और उन्हें पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना ज्यादा लगता है।
इसी घुटन भरे नियंत्रित माहौल में एक दिन बिजली की तरह एंट्री होती है रैंडल पैट्रिक मैकमर्फी की।
हाँ, लाल बाल, जोरदार ठहाके, आंखों में शरारत और सीने में एक बागी दिल।
एक जुआरी है, झगड़ालू है और जिंदगी को भरपूर जीने वाला इंसान लगता है वो।
और वो अस्पताल आया क्यों है? जेल की सजा से बचने के लिए पागल होने का नाटक करके। सोचता है कि यहाँ जिंदगी ज्यादा आसान होगी।
उसे पता नहीं था कि वो कहाँ आ गया है।
बिल्कुल नहीं। और उसके आते ही वार्ड का माहौल बदलने लगता है। सालों से छाई खामोशी में उसका ठहाका गूंजता है। वो मरीजों से हाथ मिलाता है, मजाक करता है, ताश खेलना सिखाता है। शुरू में वो उन्हें थोड़ी दया से देखता है, जैसे डरे हुए चूजे हों जो नर्स रैचेट की मर्जी पर जीते हैं।
लेकिन धीरे धीरे वो उनमें छिपी इंसानियत को पहचानने लगता है।
हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो नर्स रैचेट के बनाए नियमों को पहले दिन से ही चुनौती देना शुरू कर देता है।
ये टकराव बहुत जल्दी सामने आता है ना, वो वर्ल्ड सीरीज वाला किस्सा।
हाँ बिल्कुल। मैकमर्फी चाहता है कि वार्ड का वो उबाऊ शांत संगीत बंद करके टीवी पर वर्ल्ड सीरीज बेसबॉल का मैच देखने दिया जाए।
एक मामूली सी मांग लगती है।
लेकिन नर्स रैचेट के लिए ये उसके अधिकार को सीधी चुनौती है। वो वोटिंग करवाती है। मैकमर्फी कुछ वोटों से हार जाता है तो रैचेट टीवी बंद करवा देती है।
लेकिन मैकमर्फी हार नहीं मानता और यही उपन्यास का एक बहुत ही पावरफुल सीन आता है।
हाँ, जब मैकमर्फी और उसके साथी मरीज जो उसे वोट दे रहे थे मैच के समय खाली बंद टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं
और उसे ऐसे घूरते हैं मानो मैच चल रहा हो।
बिल्कुल। ये सिर्फ टीवी की बात नहीं थी, ये रैचेट के बनाए उस छोटे से ब्रह्मांड में व्यक्तिगत इच्छा और विद्रोह की पहली बड़ी दस्तक थी।
ये दिखाता है कि आप भले ही लड़ाई ना जीतें पर अपनी हार मानने से इनकार कर सकते हैं। ये पैसिव रेजिस्टेंस का बिना हथियार उठाए लड़ाई का एक प्रतीक है।
मैकमर्फी ने वहां व्यवस्था से सीधा लोहा लेना शुरू कर दिया था कह सकते हैं।
बिल्कुल।
और इस एक घटना से दूसरे मरीजों पर भी असर पड़ता है। वो देखते हैं कि कोई है जो नर्स रैचेट से डरता नहीं है,
जैसे वो डेल हार्डिंग।
हाँ, डेल हार्डिंग, जो बहुत पढ़ा लिखा और बौद्धिक है लेकिन अपनी पत्नी और अपनी मर्दानगी को लेकर गहरी असुरक्षा महसूस करता है।
यहाँ बिली बिबिट।
बिली बिबिट एक 31 साल का शर्मीला लड़का जो अपनी दबंग माँ के डर से बुरी तरह हकलाता है और आत्मविश्वास खो चुका है।
मैकमर्फी उनसे बात करता है, उन्हें छेड़ता है, उन्हें हंसाता है
और धीरे धीरे उनमें सोए हुए आत्मसम्मान को जगाने की कोशिश करता है।
वो उन्हें सिर्फ हंसाता नहीं बल्कि उन्हें उनकी अपनी ताकत का एहसास दिलाने की कोशिश करता है ना?
हाँ बिल्कुल। शायद वो मछली पकड़ने वाली यात्रा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।
हाँ, उस यात्रा के बारे में बताइए।
वो यात्रा एक मील का पत्थर साबित होती है। मैकमर्फी किसी तरह नियमों को तोड़ मरोड़कर, वार्ड के अर्दली को पटाकर कुछ मरीजों को अस्पताल से बाहर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने ले जाता है।
कमाल है।
सोचिए, सालों बाद पहली बार अस्पताल की बंद दीवारों से बाहर खुली हवा में सांस लेना, वो समुद्र का रोमांच, लहरों का शोर,
फिर एक बड़ी मछली पकड़ने का वो गर्व।
हाँ, वो पल जब वे अपनी पकड़ी हुई बड़ी मछली के साथ लौटते हैं, वो सिर्फ एक जीत नहीं, वो उनके खोए हुए आत्मसम्मान की वापसी जैसा है। उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ मानसिक रोगी नहीं बल्कि सक्षम इंसान।
हाँ, और यहाँ किसी पुरुषत्व की जो प्रचलित धारणाएं हैं उनको भी जैसे दोबारा परिभाषित कर रहे हैं। नर्स रैचेट का सिस्टम पुरुषों को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर, नियंत्रित और एक तरह से नपुंसक बनाने का काम करता है।
उनकी इच्छाओं, उनकी आक्रामकता, उनकी पहचान को दबा दिया जाता है।
और मैकमर्फी और ये यात्रा उस प्रक्रिया को चुनौती देते हैं। वो दिखाते हैं कि असली ताकत सिर्फ नियमों को मानने में नहीं
बल्कि उन्हें तोड़ने में, दोस्ती निभाने में, खुलकर हंसने में और अपनी इच्छाओं को जाहिर करने में।
और यात्रा इसी नई, ज्यादा मानवीय मर्दानगी का प्रतीक बन जाती है एक तरह से।
बिल्कुल। लेकिन कहानी का रुख तब बदलता है जब मैकमर्फी को एक कड़वी सच्चाई पता चलती है।
अच्छा, क्या होता है?
उसे लगता था कि वो कुछ समय बाद यहाँ से छूट जाएगा, जैसे जेल से छूटता,
पर उसे पता चलता है कि वो कमिटेड है।
कमिटेड
मतलब
उसकी रिहाई की कोई तय तारीख नहीं है। वो तब तक नहीं छूट सकता जब तक डॉक्टर और खास तौर से नर्स रैचेड उसे ठीक घोषित ना कर दे।
अरे बाप रे, तो मतलब पूरी तरह उसकी मर्जी पर निर्भर था ना?
हाँ बिल्कुल। और यही मैकमर्फी के लिए सबसे बड़ा शौक था। उसे एहसास होता है कि वो जेल से ज्यादा खतरनाक जाल में फंस गया है।
एक ऐसा जाल जहाँ सजा अनिश्चित है और चाबी उसी के हाथ में है जिसे वो चुनौती दे रहा है।
बिल्कुल। इसी हताशा और गुस्से में वो नर्स स्टेशन का वो शीशे का पैनल तोड़ देता है
जो नर्स को मरीजों से अलग रखता है।
हाँ, ये महज गुस्सा नहीं था, ये उस अदृश्य पिंजरे, उस नियंत्रण की दीवार को तोड़ने की एक बेताब प्रतीकात्मक कोशिश थी।
ये सीधे तौर पर शक्ति और नियंत्रण के उस खेल को दिखाता है जहाँ संस्था के पास व्यक्ति को अनिश्चित काल तक कैद रखने की ताकत है।
अपनी आज़ादी की उम्मीद लगभग खो देने के बावजूद मैकमर्फी हार नहीं मानता।
अच्छा, वो क्या करता है?
वो एक आखिरी सबसे बड़ा विद्रोह रचता है। वो रात के अर्दली को रिश्वत देकर अपनी दो महिला मित्रों कैंडी और सैंडी को चुपके से वार्ड में बुला लेता है।
वार्ड में?
हाँ, और फिर उस रात वार्ड में वो होता है जो अकल्पनीय था, एक गुप्त पार्टी, शराब, संगीत, हंसी मजाक, नाच गाना।
ये तो कमाल का विद्रोह था, संस्था के दमनकारी दिल में जीवन और आजादी का जश्न।
बिल्कुल, एक अराजक भरपूर जश्न।
और इसी पार्टी में वो बिली बिबिट की मदद करता है ना?
हाँ, मैकमर्फी बिली के लिए कैंडी के साथ कुछ अकेले पल बताने का इंतजाम करता है। बिली जो हमेशा औरतों से डरता और शर्माता था,
वो अपनी वर्जिनिटी खोता है।
हाँ, और अगली सुबह वो बिना हकलाए आत्मविश्वास से बात करता है। ऐसा लगता है मानो वो रात भर में बदल गया हो, उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो।
ये उसके लिए एक अद्भुत मुक्तिदायक क्षण रहा होगा।
बिल्कुल, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सुबह होते ही नर्स रैचेट को पार्टी और बिली की करतूत का पता चल जाता है। वार्ड के सारे मरीज इकट्ठा होते हैं और तब रैचेट अपना सबसे क्रूर दांव खेलती है।
वो क्या करती है?
वो बिली को डांटती या सजा नहीं देती, वो शांति से लेकिन बेहद ठंडे तरीके से उसे उसकी माँ की याद दिलाती है।
ओह नो।
पूछती है कि वो अपनी माँ को क्या बताएगा, वो कितनी शर्मिंदा होगी। बिली के लिए माँ का डर और शर्मिंदगी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी।
रैचेट ने सीधे वही चोट की, उसने बिली पर हाथ तक नहीं उठाया,
नहीं,
सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी सबसे गहरी शर्मिंदगी और डर को कुरेदा और उसे वहीं सबके सामने तोड़ दिया।
बिल्कुल, बिली का नया पाया आत्मविश्वास पल भर में बिखर जाता है। वो फिर से हकलाने लगता है, गिड़गिड़ाता है,
और फिर
कुछ ही देर बाद वो डॉक्टर के कमरे में जाकर आत्महत्या कर लेता है।
ओह गॉड, ये उपन्यास का शायद सबसे सबसे मार्मिक और दिल दहला देने वाला क्षण है।
हाँ, बहुत भयावह है। ये दिखाता है कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण शारीरिक हिंसा से भी ज्यादा घातक हो सकता है।
रैचेट जानती थी कि बिली की दुखती रग क्या है और उसने बेरहमी से उसी का इस्तेमाल किया है।
बिली की मौत मैकमर्फी को अंदर तक तोड़ देती है, वो रैचेट को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराता है
और अपने सारे गम और गुस्से में वो रैचेट पर हमला कर देता है।
हाँ, वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है, उसकी सख्त सफेद वर्दी फाड़ देता है, उसके स्तनों को उजागर कर देता है।
ये महज बदला नहीं था ना?
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये उस अमानवीय निर्विकार व्यवस्था के चेहरे पर एक मानवीय चीख थी।
उसने रैचेट की वर्दी फाड़कर उसके उस कथित अजय लिंगहीन नियंत्रण के आवरण को भेद दिया, उसे सबके सामने महज एक कमजोर भयभीत इंसान के तौर पर उजागर कर दिया।
ये मैकमर्फी का आखिरी सबसे विस्फोटक विद्रोह था जिसने रैचेट की सत्ता को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया,
भले ही उसकी कीमत उसे खुद चुकानी पड़ी।
और कीमत बहुत भारी थी। इस हमले के बाद मैकमर्फी को वार्ड से ले जाया जाता है
और जब वो वापस आता है
तो वो मैकमर्फी नहीं रहता, उस पर लोबोटॉमी कर दी गई थी।
लोबोटॉमी, वो दिमागी ऑपरेशन?
हाँ, जिसने उसकी आत्मा, उसकी चेतना, उसकी विद्रोही भावना को हमेशा के लिए मिटा दिया था। वो अब बस एक खाली शरीर था, आंखें पथराई हुई, कोई भाव नहीं,
एक जीती जागती लाश।
हाँ, नर्स रैचेट उसे वार्ड में रखती है शायद बाकी मरीजों के लिए एक चेतावनी के तौर पर कि विद्रोह का अंजाम क्या होता है।
ये देखना चीफ ब्रॉमडन के लिए असहनीय रहा होगा, जिसने मैकमर्फी में एक दोस्त और एक तरह का मुक्तिदाता देखा था।
हाँ, ब्रॉमटन जो मैकमर्फी के आने के बाद से धीरे धीरे अपनी उस धुंध से बाहर आ रहा था, अपनी चुप्पी तोड़ रहा था,
वो मैकमर्फी की इस हालत को उसकी विरासत नहीं बनने दे सकता था।
नहीं, वो समझता था कि इस अवस्था में मैकमर्फी को छोड़ देना उसकी आत्मा की हत्या होगी, जो रैचेट नहीं कर पाई थी। तो एक रात
क्या करता है वो?
अत्यंत दया और शायद प्रेम के कार्य के रूप में ब्रॉमडन तकिए से निष्क्रिय मैकमर्फी का गला घोंट देता है,
उसे इस जीवित मृत्यु से मुक्त कर देता है।
हाँ,
ये एक चौंकाने वाला लेकिन शायद उसकी विरासत को बचाने के लिए जरूरी कदम था।
और फिर ब्रॉमडन वो करता है जो शायद मैकमर्फी की सच्ची जीत थी।
क्या?
वार्ड में एक बहुत भारी भरकम हाइड्रोथेरेपी कंट्रोल पैनल था, जिसे उठाने की मैकमर्फी ने कभी शर्त लगाई थी और हार गया था, ये साबित करने के लिए कि कुछ चीजें व्यवस्था में बदली नहीं जा सकती।
हाँ, याद है।
ब्रॉमडन मैकमर्फी से मिली नई शारीरिक और मानसिक शक्ति से उस असंभव से लगने वाले पैनल को उखाड़ लेता है।
सच में?
हाँ, उसे खिड़की पर दे मारता है और टूटी हुई खिड़की से निकलकर रात के अंधेरे में आजादी की ओर भाग जाता है।
क्या बात है।
वो न सिर्फ अपनी बरसों की कैद से आजाद होता है बल्कि मैकमर्फी की विद्रोही आत्मा को भी अपने साथ ले जाता है।
वाह, तो मैकमर्फी की हार एक तरह से जीत में बदल जाती है। उसे अक्सर एक बलिदान के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है।
हाँ, कुछ कुछ ईसा मसीह जैसा रूपक भी देखते हैं लोग,
जो दूसरों को रास्ता दिखाने आता है और उनके लिए कुर्बान हो जाता है। उसका शारीरिक अंत ब्रॉमडन के भागने के जरिए एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक जीत बन जाता है।
ये बलिदान और मुक्ति का एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है
और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम संस्थागत नियंत्रण के केंद्रीय संघर्ष का चरम बिंदु भी है।
ब्रॉमडन का रूपांतरण और उसकी आजादी ही उपन्यास की आखिरी उम्मीद है।
ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का साहस और विद्रोह, भले ही वो कुचल दिया जाए, दूसरों को प्रेरित कर सकता है, बदलाव की चिंगारी जला सकता है।
बिल्कुल।
और हमें मैकमर्फी के सबसे असरदार हथियार को नहीं भूलना चाहिए, उसकी हंसी।
हाँ, उसकी हंसी।
जैसा उसने खुद कहा भी, जब आप अपनी हंसी खो देते हैं तो आप अपना आधार खो देते हैं।
Man, when you lose your laugh, you lose your footing.
वो हंसी उस खुटन भरे नियंत्रित माहौल में विद्रोह का, जीवन शक्ति का और मानवीय गरिमा का सबसे बड़ा ऐलान थी।
नर्स रैचेड हंसी से सबसे ज्यादा डरती थी क्योंकि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था।
सही कहा।
तो अगर हम समेटें, इस उपन्यास के मुख्य संदेश क्या हैं? ये विवेक और पागलपन की हमारी बनी बनाई परिभाषाओं पर गहरा सवाल खड़ा करता है।
हाँ,
क्या वो लोग ज्यादा पागल हैं जो संस्था के अंदर हैं, या वो व्यवस्था ही पागलपन की हद तक अमानवीय है जो उन्हें ठीक करने के नाम पर कुचल देती है?
और ये सिर्फ अस्पताल की बात नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस संस्था, हर उस व्यवस्था की तीखी आलोचना है, चाहे वो सरकार हो, कॉरपोरेशन हो या समाज के नियम, जो व्यक्ति की पहचान को मिटाकर उसे एक ढर्रे पर लाने की कोशिश करती है।
ये अनुरूपता मतलब भेड़चाल की कीमत और व्यक्तिवाद एवं प्रतिरोध के महत्व को रेखांकित करता है।
और ये सवाल आज भी उतने ही, बल्कि शायद ज्यादा मौजू है। हाँ, क्योंकि हम सब किसी न किसी कंबाइन का हिस्सा हैं, चाहे वो दफ्तर की राजनीति हो, सोशल मीडिया का दबाव हो या सामाजिक अपेक्षाएं।
उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कब और क्यों चुप रहना चुनते हैं
और कब अपनी आवाज उठाने का साहस करते हैं।
केसी का लिखने का अंदाज भी कमाल का है, ब्रॉमडन की नजर से कहानी कहना।
हाँ, वो हमें सीधे उसके मनोवैज्ञानिक अनुभव में खींच लेता है।
उसकी धुंध और कंबाइन के प्रतीक हमें व्यवस्था के अदृश्य दबावों को महसूस कराते हैं, भले ही हमें पता हो कि उसकी वास्तविकता शायद पूरी तरह वस्तुनिष्ठ न हो,
पर वो हमें गहरी सच्चाई का एहसास कराती है।
बिल्कुल।
हाँ, और इस उपन्यास पर बनी फिल्म 1975 भी बहुत मकबूल हुई, जिसने जैक निकोलसन को मैकमर्फी के रूप में अमर कर दिया।
हालांकि कुछ आलोचक मानते हैं कि फिल्म ने किताब की कुछ बारीकियों, खासकर ब्रॉमडन के आंतरिक संसार और नजरिए को उतना उभार नहीं पाए।
हाँ, वो बहस तो है, पर दोनों ही अपने आप में शक्तिशाली कृतियां हैं।
सही कहा।
अंत में अगर हम सोचें कि ये कहानियां हमें क्या सिखाती है या क्यों आज भी गूंजती है,
तो शायद ये कि दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए असाधारण साहस चाहिए
और उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।
हाँ, और शायद सच्ची आजादी व्यवस्था को पूरी तरह हरा देने में नहीं है,
बल्कि उस व्यवस्था के सामने अपनी इंसानियत, अपनी हंसी और अपनी आवाज को बचाए रखने के निरंतर संघर्ष में है,
चाहे नतीजा कुछ भी हो।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकौथरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।